أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن مجید کے تیسویں اور آخری جز میں گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الہمزہ تک تمام کر لیا تھا. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ الفیل سے کریں گے. پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفیل کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا الرحمن الرحیم. آیت نمبر ایک. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کام کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم تر, یاد رکھیے, دو معانی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بعض اوقات اس طرح اس شکل میں آتا ہے الم ترا, اور بعض اوقات اس شکل میں آتا ہے ارائیت, جیسے کہ ابھی سورہ معون میں آگے آئے گا ارائیت الذی یکذب بالدین. دونوں کا معنی جو ہے وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بنیادی طور پر دو معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہے اس سے مراد ہے رؤیت. رؤیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا, لیکن بعض اوقات یہ رؤیت کا معنی عقل کی آنکھ سے, بصیرت کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر محبت کے جذبے کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. جس کے اندر محبت ہے اس کی حرکات, ہم اس کی حرکات کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن خود محبت کہاں سے دیکھی جاتی ہے؟ وہ اندر کی آنکھ سے نظر آتی ہے. اس کا باہر کوئی وجود نہیں ہے کہ کسی چیز پر ہم ہاتھ رکھ کے کہیں یہ محبت ہے یا یہ نفرت ہے, اندر ہوتی ہے. تو بعض چیزیں ہیں کہ جو اندر سے, اندر کی آنکھ سے ہی ان کو انسان دیکھ سکتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے, یہ جب ہم کہتے ہیں بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, یہ جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں باہر موجود ہوتی ہے کہ اس کو انسان لمس کر سکے, اشارہ کر سکے, یہ وہ بات ہے جو مجھے سمجھ, یہ میری سمجھ ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ اندر ہوتی ہے انسان کے. تو اس معنی میں بھی رؤیت استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کبھی تو معنی یہ ہوگا کہ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کبھی یہ معنی ہوگا کیا آپ نے غور کیا ہے. یہ غور کرنا بھی, اس کے لیے بھی رؤیت کا لفظ استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. جس آیت میں استعمال ہو وہاں سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس سے مراد ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے یا اس سے مراد غور کرنا ہے. اور یاد رکھیے, اردو میں بھی ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں یار غور تو کرو, اور کبھی کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح. یہ دیکھو تو صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ سے دیکھو, بلکہ ذرا مزید غور کرو, شاید کوئی گنجائش ہماری بات کی تمہارے پاس نکل آئے. بس یہ دیکھنا یعنی رؤیت, دونوں معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یمن سے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا, یہاں پر کبھی بھی کوئی عربوں کی بڑی حکومت, طاقتور حکومت یہ نہیں رہی, اس لیے کہ یہ بالکل صحرا کا علاقہ تھا اور ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی بڑے شہر آباد ہو سکیں اور کوئی جذابیت, کوئی اٹریکشن ہو بادشاہوں کے لیے کہ یہاں پر آ کر اپنے محلات بنائیں اور یہاں پہ آ کے رہے, نہیں تھا ایسا. वो इलाका कि जहाँ अरबों की हुकूमतें बना करती थी, ज़्यादातर बनी है, वो इलाका यमन का इलाका है, सरसब्ज व शादाब। तो वहाँ पर वहाँ का हाकिम अब्रहा के जो उसने अपना एक इबादत खाना तैयार कराया, बड़ा अजीमुशान उसने इमारत बनाई और लोगों से ये चाहा कि बजाय बैतुल्ला जाने के, बजाय मक्का जाने के, उस घर की ज़ियारत और वहाँ पर इबादत के लिए इकट्ठे हों। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरकत ज़ाहिर है कि काबा में रखी थी और जो लोगों के दिलों के अंदर उस घर की अकीदत थी, वो अकीदत, चाहे वो घर चंद पत्थरों से उस वक़्त बना हुआ मौजूद था और घास फूस डाल कर या मसलन चंद लकड़ी के तख्ते डाल कर उसकी छत बनाई गई थी, वो घर लोगों के दिलों में ज़्यादा अहमियत रखता था उस अजीमुशान इमारत की नस्बत के जो अब्रहा ने तामीर करवाई थी। आप देखिए कि वो तहरीकें जो अंबिया ने शुरू की, हालांकि अंबिया के पास दुनियावी शान और शौकत सिवाय इस्तिस्नाई चंद शख्सियात के, बाकी दुनियावी तौर पर अंबिया जो थे वो बहुत ही यानी कोई मालदार शख्सियात नहीं होते थे। उनकी शुरू की हुई तहरीकें, उनके असरात देखिए कब तक बाकी रहते हैं, और बड़े बड़े बादशाहों की शुरू की हुई तहरीकें अब हिस्ट्री में तो हैं लेकिन उनके असरात कोई नहीं है, लेकिन नबियों के मानने वाले आज भी हैं। आप अंबिया की तहरीकों की ज़िंदगी देखिए और गैर अंबिया बादशाहों और जनाब फलान शख्सियात, इनके कोई फ़लसफ़ा पेश करता है, थोड़े अरसे के बाद कोई और आता है उसके फ़लसफ़े को मसलन रद्द करता है, ख़त्म हो जाता है, और उसके मोतकदीन भी, उसके फॉलो करने वाले भी ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, आप हज को ले लें, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया हज के लिए, ऐलान कर दो लोगों में आपके पास आएंगे, उस ज़माने से लेके आज तक इन लोगों ने दीन में भी तारीफ कर दी उस ज़माने में, तब भी हज पे आना नहीं छोड़ा, और फिर रसूलुल्लाह के ज़रिए अल्लाह ने दोबारा उस तहरीक को इहया कर दिया। तो दीन एक ऐसी चीज़ है, चूँकि इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला होता है, दीनी चीज़ों के इंसान के अंदर जो अकीदत और हैबत बैठती है, वो दुनियादार लोग अपनी चीज़ों और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पैदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब ये हसद की आग में जलना शुरू हुआ और इसने किसी बात को बहाना बनाकर लश्कर तैयार किया और उस लश्कर में इसने हाथी भी साथ रखे, और इरादा ये था कि ये वहाँ जाकर बैतुल्ला को नाउज़ु बिल्ला मिसमार कर देगा, उस इमारत को ख़राब कर देगा। अब जब वो इमारत ही नहीं रहेगी तो उसकी अकीदत भी ख़त्म हो जाएगी और लोग मेरे पास, फिर जो मैंने इबादतगाह बनाई है, माबद बनाया है, उसमें आया करेंगे। तो ये हाथियों का लश्कर लेकर चला और जब मक्का के करीब पहुँचा, जो लोग हज पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तौफीक दिए जानते हैं कि जब मुज़दलिफ़ा से मिना में दाखिल होने लगते हैं तो वहाँ पर एक इलाका आता है थोड़ा सा, उसे कहते हैं वादी मुहस्सर। ये वो जगह है जहाँ पर अब्रहा का लश्कर अजाब का शिकार हुआ था। तो जब यहाँ पर पहुँचा, बिलाखिर उसका इरादा था खाना काबा पर हमला करने का, जब इस हमले की नीयत से वो यहाँ से आगे बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बहुत सारे परिंदे मुख्तलिफ ग्रोहों की झुंड दर झुंड, झुंडों की शक्ल में वो परिंदे आए और उन्होंने कंकरियां बरसाई इस लश्कर पर, कहाँ हाथी और कहाँ इतने ताकतवर लश्कर वाले लोग और कहाँ मामूली परिंदे और कहाँ उनके पंजों में और उनकी चोंचों में जो पत्थर मौजूद थे, वो उन्होंने इन पर बरसाए और ये ताकतवर लश्कर जब वो अजाब की कैफियत, परिंदों की कार्रवाई, जब अल्लाह के उस लश्कर की कार्रवाई जब तमाम हुई तो इनकी हालत कैसी हुई पड़ी थी, जैसे जानवर भूसे को चबा कर फेंक दे, चबाया हुआ, खाया हुआ भूसा, उसकी भूसे की अपनी भी कोई ताकत नहीं होती, बड़ा कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन उसको भी जब चबा दिया जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। इस हालत में ये ताकतवर लश्कर अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचा दिया। इस सूरह मुबारका में रसूलुल्लाह को तसल्ली दी जा रही है। ये मक्की सूरह है, इब्तदाई नाजिल होने वाली सूरतों में है। जब तहरीक इस्लाम अभी बड़े अपने कमज़ोरी के अय्याम गुजार रही है, हामी बहुत कम है, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ताकतवर हैं, तो रसूलुल्लाह अपने अल्लाह ताला अपने नबी से क्या कहकर तसल्ली दे रहा है कि ये कुछ ही अरसा पहले इसी मक्का पर एक लश्कर हमला आवर हुआ था, जिसको देखकर यही मक्का वाले ए रसूल, यही कौम जो आपको धमकियां दे रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं और आप पर ईमान लाने वालों को तकलीफें दे रहे हैं, वो जो लश्कर आया था काबे पर हमला करने के लिए, उसकी हैबत देख के डर के ये पहाड़ों पर चढ़ गए थे। मक्का वाले अबरहा के लश्कर की हैबत से मुकाबला करने की उनमें जरूरत नहीं थी, छोड़कर अपने घर छोड़कर पहाड़ों पर ऊपर चले गए थे कि कहीं अबरहा के लश्कर की के हमले की जद में ना आ जाए। तो अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है, वो इतना ताकतवर लश्कर जिससे ये डर गए थे, उस लश्कर के साथ ए रसूल आपके रब ने क्या किया था? वो रब आपका हामी है। ये रसूलुल्लाह को तसल्ली भी दी जा रही है और मक्का वालों को, मुखालिफिन को खबरदार भी किया जा रहा है। अलम तर कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? दो, ये वाकया मशहूर था, कोई बहुत अरसा नहीं हुआ था इस वाकये को गुजरे हुए। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, आयत नंबर दो, क्या उसने उनकी चाल को बे यानी निशाने से हटा नहीं दिया? तदलील का माना होता है जो सीधा रास्ता है उससे हटा देना, यानी उन्होंने चाल जो चली थी उससे जो मकसद लेना चाहते थे उस मकसद को, उस मकसद से उस चाल को नाकाम नहीं कर दिया, नहीं पहुंच सके उस मकसद तक। और कैसे नाकाम किया? कोई बहुत बड़ा एहतमाम करना पड़ा अल्लाह को, कोई बहुत बड़ी मखलूकात भेजनी पड़ी हाथियों के मुकाबले पे, हाथी भेजने पड़े अल्लाह को? नहीं। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनकी चाल को बेमकसद बेनतीजा नहीं बना दिया? तीन, कैसे बनाया? व अरसल अलैहिम ऐरन अबाबील, और उन पर दस्ते दस्ते या झुंड दर झुंड परिंदे भेजे। ऐरन परिंदे, अबाबील, तवज्जो फरमा लें, अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है। कुछ लोग जो है वो ये मशहूर है, गलत है लेकिन मशहूर है, और वो क्या अबाबील कोई खास परिंदा है और लोग कहते हैं कि इन पे अल्लाह ताला अबाबीले भेजेगा, और जहन में क्या होता है इनको खास परिंदा है। और बाज लोग तो हैं उन्होंने किसी परिंदे की फोटो खींच कर और उस पर पूरी तहकीक भी कर डाली, ये वो अबाबील है जिसने यूं, आप देखें इसके पंजे कितने छोटे हैं, इसकी चोंच कितनी छोटी है, इसने अबरहा के लश्कर को तबाह कर दिया। लेकिन बेचारों को ये पता नहीं होता कि अबाबील किसी परिंदे का नाम ही नहीं है। अबाबील गुरोहों को कहते हैं, गुरोह दर गुरोह, यानी परिंदे भेजे, कौन से परिंदे थे अल्लाह बेहतर जानता है। अबाबील का मतलब है ग्रुप्स की शक्ल में, झुंड दर झुंड वो परिंदे आए और उन्होंने क्या किया? चार, तर्मीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर सख्त यानी पकाई हुई मिट्टी की के पत्थर बरसा रहे थे। अब कहीं से वो अल्लाह के हुक्म से वो कंकरियां लेकर आए थे और वो उस लश्कर पर उन्होंने बरसाए, और छोटी छोटी कंकरियां हाथियों का क्या बिगाड़ सकती है, इंसानों का क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जब अल्लाह किसी चीज में तासीर रखते तो फिर ताकतवर तरीन चीज एक कमजोर तरीन चीज के सामने बेबस हो जाती है। तर्मीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर सख्त मिट्टी के पत्थर बरसा रहे थे, आयत नंबर 5 जो आखिरी आयत है, क्या नतीजा निकला? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो नतीजे में उन्हें करार दे दिया, यानी उन्हें बना के रख दिया। कैसा बना के रख दिया उस लश्कर को? जैसे भूसा, कैसा भूसा? खाया हुआ। आपने देखा होगा जानवर जब भूसा खाते हैं तो वो अपने मुंह में उसकी जुगाली करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो इंसान तसव्वुर कर सकता है कि उस चबाए जाने के बाद उस भूसे की हालत क्या होती है। कहां वो ताकतवर लश्कर जिसको देखकर मक्के वाले पहाड़ों पे चढ़ गए थे डर के, और कहां मामूली परिंदों और मामूली कंकरियों के जरिए उनको खाया हुआ भूसा बना के रख दिया। ए रसूल, आपका रब आपका पुश्त पना है, वो आपकी तहरीक का आपका मुहाफिज है। आपको तसल्ली और मक्के वालों को होशियार किया जा रहा है कि खबरदार हो जाओ, जिस रब ने, जिस रब काबा ने हलाक कर दिया था अब्रहा के लश्कर को, ये उसका रसूल है। उस रब के मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा अपने अरकात से, अपनी मुखालफतों से बाज आ जाओ। सूरतुल फील के बाद सूरतु कुरैश। कुरैश वो कबीला है कि जो जिस कबीले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा हुए थे। बहुत सारी शाखें थी इस कबीले की, और ये कुरैश भी रसूलुल्लाह के अजदाद में से एक जद का लकब था कि इसी के नाम से फिर कुरैश मशहूर हो गए थे। सूरतुल कुरैश की पहले हम तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। सूरतुल कुरैश का तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत। बनाम खुदाए रहमान रहीम, आयत नंबर 1, लीलाफ़ी कुरैश, कुरैश को मानूस रखने की खातिर। दो, ईलाफ़िहिम रिहलत शिता वस्सैफ़, उन्हें जाड़े यानी सर्दियों और गर्मी के सफरों से मानूस रखने की खातिर। अल्लाह तबारक व तआला मक्के वालों की जो मुखालफत थी, रसूलुल्लाह की तहरीक की मुखालफत, इसके जवाब में कई तरीकों से इन्हें खबरदार भी करता है अल्लाह ताला, और इनको अपने एहसानात भी याद दिलाता है। मक्का की कैफियत क्या थी? अगर आप खाना काबा को निकाल दें मक्का में से तो कोई मक्का ना जाता। सख्त तरीन पहाड़, पहाड़ी चट्टाने, पानी की किल्लत, दरख्तों और सब्जे वगैरह का ना उगना, ये सूरत हाल। जो लोग हज की सआदत या उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं, आप अब तो खैर मक्का क्या से क्या बन गया ज़ाहरी तौर पर भी, लेकिन अगर आप मक्के के पहाड़ों को देखें, मक्के की अपनी ज़मीन को देखें, तो आपको अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है कि ये इलाका किस किस्म का इलाका था। जब आप मक्का से मदीना निकलते हैं सफ़र के लिए, तो फिर आसपास के जब आप माहौल को देखते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं ज़मीन को जब देखते हैं कि कैसी सरजमीन है। इस इलाके में इस काबा की बरकत से कुरैश को क्या क्या फ़वाद हासिल थे? नंबर एक, तो इस काबा की ज़्यारत करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, और जब वो आते थे तो अपने साथ अपने अपने इलाकों का सामान, तजारती सामान, ग़िज़ा का सामान, बहुत कुछ वो लाया करते थे। तो ख़ुद ब खुद ये सामान मक्का में पहुंचता रहता था, और मक्का एक तिजारती शहर में तब्दील हो गया हुआ था। इसी काबा की बरकत से। आज भी ऐसा ही है, तवज्जो फरमाए। उसके बाद इस काबा के एहतराम की वजह से कुरैश का एहतराम था लोगों में, क्योंकि कुरैश मुतवल्ली समझे जाते थे खाना काबा के, मस्जिदुल हराम के, तो एक ख़ास किस्म का एहतराम मुख्तलिफ इलाके के लोग इनका किया करते थे। और कुरैश जब अपने तिजारती काफ़िले, ये दो सफ़र किया करते थे, एक सफ़र इनका सर्दियों में होता था और एक सफ़र इनका गर्मियों में होता था, और ये दोनों तिजारती सफ़र होते थे। इन दोनों सफ़रों में ऐसे इलाकों से गुजरते थे जहाँ पर चोर डाकू वगैरह लोग हुआ करते थे, लेकिन काबे के एहतराम और काबे की हैबत की वजह से, और ये चूंकि काबे से मंसूब थे, मुतवल्ली थे, इनके एहतराम में लोग इन्हें कुछ भी नहीं कहते थे, हत्ता कि इनके काफिले चोरों और डाकुओं से भी महफूज रहा करते थे। फिर अगर किसी इलाके से गुजर रहे हैं और वहाँ के लोग अपने इलाके से गुजरने का कोई मसलन टैक्स वगैरह या कुछ लेते, इनसे नहीं लिया करते थे। तो अल्लाह इनसे कह रहे हैं, ये जो तुम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिन अपने इलाके की अपनी सरजमीन को देखो और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, और ये जो तिजारती सफ़र तुम करते हो और बड़े आराम से कर लेते हो, तुम्हें कोई वहशत नहीं होती, अब तुम इससे मानूस हो गए हो, एक सफ़र सर्दियों में एक सफ़र गर्मियों में करते हो, ये किसकी वजह से है? तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी सलाहियत है कि ये कौमें तुम्हारा एहतराम करती हैं? तुमने कोई इन पर एहसान किए हुए कि कौमें तुम्हारा एहतराम करती हैं? और जो दूसरे काफिलों को अमन व अमान की कैफियत हासिल नहीं है, वो तुम्हें हासिल हुई है? कि सब कुछ उस अल्लाह के घर की वजह से है जो मक्का में है। अब उसी अल्लाह का एक नबी उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें दावत देने के लिए आया है, और तुम इन तमाम एहसानों से सरफ नज़र करके उस नबी के मुखालिफ बने खड़े हो, उसकी मुखालफत कर रहे हो, उसके साथ दुश्मनी पे उतर आए हो, जो उस पर ईमान लाए हैं उनको अजियतें देते हो, सजाएं देते हो। ये एहसानात इस मुख्तसर सी सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने याद कराए हैं और कहा है कि इन एहसानों का तो फिर हक ये बनता था कि इसी घर के रब के तुम लोग इबादत करो। ये माना है आयत नंबर एक, कुरैश को मानूस रखने के लिए। किस चीज से मानूस रखने के लिए? दो, उन्हें जाड़े यानी सर्दी और गर्मी के सफरों से मानूस रखने के लिए, यानी ये जो हमने तुम पर एहसान किए इनके लिए ही तुम क्या करो, इनके बदले में इनका शुक्रगुजारी के लिए तुम्हें अल्लाह के इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करनी चाहिए। चूंकि ये सारी बरकात इस बैतुल्लाह की वजह से है, लिहाजा अगली आयत में उसी बैत का उसी घर का जिक्र किया जा रहा है। आयत नंबर तीन, फल्यअबुदु रब्ब हादल बैत। चाहिए था कि वो इस घर के रब की इबादत करें, शिर्क ना करें, औरों को अल्लाह का शरीक ना बनाए, इस घर के रब की इबादत करें। जो हमने उन्हें मानूस कर दिया, कुरैश को सर्दियों और गर्मियों के सफर से मानूस कर दिया। ये मानूस इंसान तब होता है जब खतरा ना हो वहां पर, वरना तो इंसान कहता है पता नहीं जा रहा हूं वापस आना या नहीं आना। मानूस इंसान कब होता है? आप देखें, मसलन कुछ जानवर होते हैं जो मानूस हो जाते हैं, कुछ जानवर होते हैं वैशी होते हैं, मानूस नहीं होते। ये फर्क है। तो एक दफ़ा एक सफ़र से इंसान को वहशत आ रही हो कि पता नहीं क्या बनेगा, और एक दफ़ा बड़े आराम से जा रहा हो, इत्मीनान हो, मुझे कुछ भी नहीं होना इस सफ़र में, सारे रास्ते में मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये क्यों हुआ? इस बैत की वजह से। तो फिर इन्हें चाहिए था कि वो इस घर के रब की इबादत करें। आयत नंबर चार जो आखिरी आयत है, कौन सा रब? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उन्हें खाना खिलाया, अतअमहुम इतआम यानी खाना खिलाना, जिसने वो रब के जिसने उन्हें खिलाया, खाना खिलाया, गिजा खिलाई, मिन जूइन, जू किसे कहते हैं, असल में उस दर्द को कहते हैं जब जो मैदे में उठती है जब मैदा खाली हो, उसको उसको अरबी जुबान में जू कहा जाता है, जिसने उन्हें भूख में, हम उसे भूख कहते हैं, भूख में खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से उन्हें अमन दिया। भूख से खाना खिलाया यानी तुम अपना इलाका देखो, तुम तो भूखे मर रहे होते अगर ये काबा ना होता, अगर इस काबे की वजह से अल्लाह के तुम पर ये एहसान ना होते, और अगर ये काबा ना होता तो तुम्हें खौफ हुआ करता सफर पर जाते हुए, काफिला लुट जाएगा, कत्ल कर दिए जाओगे, जैसे दूसरों के साथ रास्ते में चोर डाकू किया करते थे। तो जिस जो तुम्हें खिला रहा है भूख में, यानी भूख तो हरेक को लगती है, लेकिन इनके इलाके को मद्देनजर रखकर कहा जा रहा है, जहां पे फसलें नहीं उगती, मिसाल के तौर पर जहां पे फल वगैरह दीगर नहीं उगते, तो वहां के लोग फिर ज्यादा भूख का शिकार होते, कैद का शिकार होते। उसने तुम्हें खिलाया और उसने तुम्हें खौफ से अमन दिया, जैसा कि हम गुज़श्ता आयत में आपकी खिदमत में बयान कर चुके। तो खुलासा ये कि मक्का वालों से कहा जा रहा है कि तुम एहसान फरामोश ना बनो, ना शुक्र ना बनो, जिस बैत की वजह से तुम खा रहे हो और अमन में रह रहे हो, उस बैत, उस घर के रब की इबादत करो, किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराओ, और अल्लाह के रसूल की मुखालफत ना करो। यहाँ पर सूरह कुरैश तमाम होती है, और सूरह कुरैश के बाद अगली सूरतुल माउन है। पहले हम इसकी तिलावत करेंगे, उसके बाद तर्जमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरएता अल्लजी युकज्जिबु बिद्दीन, فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। सूरतुल माउन का तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत। बनाम खुदाए रहमान रहीम, आयत नंबर एक, अरआईता, ये वही लफ्ज़ है थोड़ी सी बदली हुई शक्ल में जो सूरतुल फील में गुजरा, अलम तरा, माना वही है। अरआईता, अरआईता लजी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को कि जो युकद्दिबु तकदीब करता है, झुठलाता है, यानी कहता है ये झूठ है, किसको झुठलाता है, बिद्दीन, जजा को। याद रखिए दीन दो माना में कुरान मजीद में आया है, दो बड़े माना में, एक माना इसका जजा है और एक माना इसका कवानीन का मजमुआ, आईन, जिसे शरीयत इस्लाम कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यहाँ पे दीन क्या मतलब है, यानी आईन, शरीयत इस्लाम, अहकाम इस्लाम। लेकिन जब हम देखते हैं मालिक यौमिद्दीन, वहां पर क्या माना, इस्लाम के दिन का मालिक नहीं, जजा के दिन का मालिक। जजा क्या होती है, किसी अच्छे या बुरे काम के नतीजे में जो बदला दिया जाता है उसको जजा कहते हैं। क्या आपने उसको देखा है जो जजा को झुठलाता है। यहां पर दीन को अगरचे अगर कोई इस्लाम के माना में लेना चाहे तो इम्कान है, लेकिन तरजीह किस माना को बनती है अगली आयात को देखकर, जजा वाले माना को, क्योंकि आगे नमाजियों का जिक्र भी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। तो नमाजी दीन को झुटलाते थोड़ी है, वो तो कहते हैं हम दीन को इस्लाम को मानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दीन को बाज मानने वाले भी जो कह चुके हैं हमने मान लिया, जजा को नहीं मानते, चाहे लाख कहते रहे हम जजा को मानते हैं। क्योंकि आगे जो आयात आ रही हैं उनको अगर हम मद्देनजर रखें तो तरजीहन हम कौन सा माना लेंगे, जजा का माना लेंगे, अगरचे दीन का माना यानी इस्लाम वाला माना भी लिया जा सकता है। अगर हम इस्लाम वाला माना लें तो क्या तर्जमा करेंगे, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो दीन इस्लाम को झुटलाता है। और अगर जजा वाला माना करेंगे तो हम क्या कहें, मालिक यौमिद्दीन वाला, तो क्या कहेंगे, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो जजा को झुटलाता है, मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। और यहाँ पे ये भी हम आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि अरबी जुबान में जजा दोनों अच्छे और बुरे दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम जो सजा कहते हैं अरबी जुबान में उसके लिए भी, सजा अरबी का लफ्ज नहीं है, जजा अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, दोनों शामिल है इसमें। जबकि जब हम उर्दू में कहते हैं तो जजा को अच्छे बदले के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके मद्द मुकाबिल सजा के लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में ऐसा है, अरबी में जजा में दोनों, जजा के माना में दोनों शामिल है। क्या आपने उस शख्स को देखा है जो जजा को झुटलाता है, क्या मतलब, यानी वो नहीं मानता कि जो वो काम कर रहा है उस पर कोई इनाम मिलना है, या ये कि जो वो गलत काम कर रहा है उस पर कोई उसकी पकड़ होनी है, सजा मिलनी है, इसको नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, उसका कोई हिसाब किताब होना है, इसको नहीं मानता। अब यहां पर जब एक मुसलमान इस आयत को पढ़ता है तो कहता है कि इस आयत से गैर मुस्लिम लोग मुराद हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं तो क़यामत को भी मानता हूँ, चाहे तुम दीन का माना इस्लाम करो मैं उसे मानता हूँ, चाहे तुम दीन का माना क़यामत करो जजा करो मैं उसे मानता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत मुझसे कुछ नहीं कह रही, ये गलत है। आयात कुरान में तदब्बुर की जो दावत दी गई है वो इंसान के आगे और दरीचे बसीरत के खोल देती है, ये कुरान मजीद की हिदायत का नूर उसके देखने की ताकत को, यानी उसकी बातनी ताकत को, बसीरत को, उसकी रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बहुत दूर तक देख लेता है। अब आप गौर फरमाइए, क्या आपने उस शख्स को देखा कि जो जजा को झुटलाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे मैं तो नहीं झुटलाता, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो सारे उसूल दीन को मानता हूं, मैं तो क़यामत पर भी मान रखता हूं, कुरान इसे कबूल नहीं करता जुबान से कहने को, ये आयत आपको खुद बताएगी। कौन नहीं मानता क़यामत को, आयत नंबर 2, फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउ अल-यतीम, तो वही है, ये वही शख्स है जो यतीम को यदुउ धक्के देता है। ये धक्के देने से मुराद बदसलूकी है, बद अखलाकी है। धक्के देना एक इजहार है उस बद अखलाकी का। दूसरी अलामत क्या है क़यामत को, जजा को झुटलाने वाले की, आयत नंबर 3, वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, और तरगीब नहीं देता मिस्कीन को खिलाने की, ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये दो अलामतें जिसमें हैं, कुरान फरमा रहा है कि ये बंदा जजा को नहीं मानता, चाहे कहे मैं मानता हूं, चाहे अपने सर पे अपने माथे पर लिखवा ले मैं क़यामत को मानता हूं, चाहे अपने घर के बाहर लिखवा ले कि यहां रहने वाला क़यामत को मानता है, नहीं मानता। जब तक ये अलामात उसके अंदर पाई जाती हो नहीं मानता। ये कैसे है, ये बिल्कुल इसकी मिसाल इसी तरह है, अल्लाह तबारक व ताला इंसान को समझा रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मुखलिस डॉक्टर, एक तबीब एक ऐसे बंदे को समझाता है जिसको बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसको उस बंदे को पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। और आपको पता है ना, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो जल्दी पकड़ी जाती हैं, उनके आसार जल्दी नजर आते हैं। खतरनाक बीमारियां जो होती हैं वो बहुत देर के बाद उनका पता चलता है कि ये बीमारी है भी या नहीं। कई लोगों को अरसा दराज के बाद पता चलता है उन्हें कैंसर है, और पता तब चलता है जब उसका इलाज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर रूहानी बीमारियां भी ऐसी होती हैं। तो वो जो तबीब है वो अल्लाह है, वो बता रहे कि तू मत कह के तू सेहतमंद है, तू मत कह के तू मानता है कयामत को, मैं तुझे बता रहा हूं तू नहीं मानता, तू बीमार है, तेरे अंदर ये बीमारी मौजूद है, जजा को झुठलाने की। अब आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद समझ रहे थे, उसने आपको देखा, आपके टेस्ट किए और आपसे कहा कि आप एक बहुत ही मोहलिक बीमारी में मुबतला है जो आपको हलाक कर दे, आपको एक झटका लगा। आपने कहा डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो हर चीज खाता हूं, फलान, मुझे सर में दर्द तक नहीं होता, आप कह रहे हैं हलाकत वाली बीमारी है। अगर आपको डॉक्टर की बात पर एतमाद है, कौन बेवकूफ होगा जिसको डॉक्टर की बात पर एतमाद ना हो, जबकि डॉक्टर उसका मुखलिस भी हो, बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। अल्लाह की बात पर एतमाद ना करने वाले भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं। रसूलुल्लाह की बात पर भी एतमाद ना करने वाले, वो एतमाद जो वाकई एतमाद हो, सिर्फ जुबान की हद तक महदूद ना हो, वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इसलिए कुरान मजीद फरमाता है अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सर इनमें से अकल इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनकी अकल लगी हुई इनकी ख्वाहिशें पूरी करने में, इनकी दुनियावी आरजुएं पूरी करने में। तो वो डॉक्टर आपसे कहता है कि मोहलिक बीमारी है आपको, आप कहते हैं आप कैसे कह रहे हैं? वो कहता है ये टेस्ट है, ये आपके ब्लड के अंदर ये मसला है, ये मसला है, ये बता रहा है कि आप मौत के करीब आ चुके हैं। जाहिरी तौर पे आप अपने आप को बड़ा सेहतमंद समझ रहे हैं। कायनात का सबसे बड़ा तबीब जो खालिक भी है, उससे बेहतर कौन जानता है बीमारियों को, वो बता रहा है मत कह जुबान से कि तू जजा को मानता है, पहले देख ये तेरे दो टेस्ट क्लियर हैं या ये टेस्ट क्लियर नहीं है। पहला टेस्ट क्या है? यतीम से बदसलूकी। कैसे तेरे अंदर जुरत आई है यतीम से बदसलूकी की, कि ऐसी उम्र में कि जबकि वो खुद ताकतवर नहीं है, अपने कदमों पे खड़ा नहीं है, तो तूने उसको बेसहारा समझा और उसके माल पे चढ़ दौड़ा और उसको तू डरा धमका के रखता है ताकि वो अपना माल तुझसे तलब न कर सके, डरा रहे तुझसे। अब इसमें वो भी शामिल है कि जो किसी यतीम की सरपरस्ती हो उनके पास, मसलन एक भाई मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे भाई के पास सरपरस्ती आ गई, अब वो भाई या अल्लाह का नुमाइंदा बन के सरपरस्ती करेगा या इबलीस का नुमाइंदा बन के सरपरस्ती करेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, कोई बंदा अपने यतीम भतीजों या भांजों का माल खाता रहे और ऊपर से साथ साथ तस्बीहां भी पढ़ता रहे और उम्रे भी करता रहे और हज भी करता रहे और ज्यारतें भी करता रहे, ये उसके मुंह पे दे मारी जाएंगी। उससे कहा जाएगा तू इन हस्तियों के दर पे जाता था, तुझे हया नहीं आती थी कि इतनी बेशर्मी करने के बाद उसी बेशर्मी के साथ तू आता था और उसी बेशर्मी के साथ तू वापस भी चला जाता था, तेरे पे असर नहीं होता था। क्योंकि इंसान देखे बाज औकात क्या होता है, इंसान बाज लोगों के सामने गुनाह कर रहा होता है, लेकिन बाज ऐसी हस्तियां जिनका वो एहतराम करता है, जब इसको पता चलता है, उनको पता चल गया है तो इसको शर्म आती है कि चूंकि उनका एहतराम ज्यादा करता है। लेकिन ऐसा शख्स इतना बेशर्म है कि ये हराम खोरी भी कर रहा है, यतीम का माल भी खा रहा है मसलन, या दीगर गुना रिश्वत भी खा रहा है, और वो जो सबसे जिन हस्तियों से सबसे ज्यादा हया करनी चाहिए उनकी ज्यारत करके आता है, फिर भी इस बेहया पे कोई फर्क नहीं पड़ता और समझता है मेरी बख्शिश हो गई है। ऐसे शैतान ऐसे बेईमानों को धोखा देता है। ठीक है, ताकि अपनी इसी सरकशी में गलता रहे और ज्यादा नशा हो जाए इनको, इन बदमाशियों का, कि जब इनको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी तो बख्शिश होगी क्योंकि तुमने ये इबादत कर दी है, तुमने ये चंदा दे दिया, तुमने ये सदका दे दिया, तुमने ये ज्यारत कर लिया, तुमने ये उम्रा कर लिया, तुमने ये हज कर लिया। मैं इस दरस कुरान में बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये करप्ट लोगों को बहाने दे दिए गए अपनी करप्शन को जारी रखने के। कुरान का एक फैसला, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। यतीम का खा के तुझसे कबूल होगा ज्यारत? रिश्वत खा के हराम से किए हुए माल से तेरी ज्यारत कबूल होगी? या कुरान गलत है या तू गलत है कि तू गलत है? हराम खोर गलत है, रिश्वत खोर गलत है, कुरान हक है। और जिस भी किसी ने किसी तकरीर में किसी किताब में तुझे ये ढकोसला दे दिया है कि तू हराम भी खा फिर भी तू बख्शा हुआ है और तेरी इबादत कबूल हो रही है, बहुत खतरनाक बात है, याद रखिएगा। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है, रिश्वतखोर की क्या कबूल होगा? यतीम का माल खाने वाले का क्या कबूल होगा जब तकवा ही नहीं है? जो आया हराम से है माल, उससे तू कौन सा नेक काम करेगा जो तेरा कबूल होगा? दवाई कड़वी है, जायका कड़वा है इसका, लेकिन दवा यही है। या उसी नशे में पड़े रहे इधर उधर से ढकोसले सुनकर, और या फिर वो सुने के या पढ़े खुद जाकर के कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ। अल्लाह कह रहे नहीं मानता तू क्यामत को, तूने यतीम को बेसहारा समझ लिया और तू चढ़ दौड़ा, या यतीम तेरे मुआशरे में थे और तुझे उनकी परवाह ही कोई नहीं, कोई तेरे पास आया भी तो तूने उसको धक्के ही दिए। या अगर इंसान इसका दायरा जरा बढ़ाए सोच सकता है, तूने यतीम को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, खुद तेरे पास नरम बिस्तर, तेरे पास सतरंगे दस्तरखान और तेरे पास तरह तरह की सवारियां, और तुझे पता है कि यतीम मौजूद हैं, और वैसे तू बड़ा अली अली करता था और अली ने तुझे वसीयत की थी कि यतीमों को भूखा ना रहने देना मेरे बाद, तुम्हारे होते हुए यतीमों के पेट खाली ना रहें, उनके मुंह खाली ना रह जाएं, और तू कहता है मैं बड़ा मानने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा मोमिन हूं, तू झूठ बोलता है, तू बहुत बड़ा फ्रॉड है। कुरान और अहले बैत, कुरान और मौला अली जुदा ही नहीं। तो पहली अलामत यतीमों के बारे में गलत रवैया, अगर है ये लाख का मेरे उसूल दीन इतने हैं तो मैं ये मानता हूं तो मैं क्यामत को मानता हूं, झूठ बोलता है, कुरान नहीं मानता इसको। कुरान कह रहा है अगर तूने देखना है उसको जो क्यामत को झुठलाता है तो उसको देख जो यतीम के साथ बुरा सलूक करता है, यतीम को धक्के देता है। दूसरी अलामत, वला यहुद अला तआमिल मिस्कीन, यहुद असल में अरबी जुबान में कहते हैं किसी जानवर को हांकने, हांकना पीछे से कि चले, और इसी से तरगीब देने का माना है। जब इंसान किसी को तरगीब देता है कि आप ये काम करें, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अजर मिलेगा आपको, ये काम करना चाहिए, ये गोया उसको तरगीब दी जा रही है, तो ये लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया। वला यहुद, और ये तरगीब नहीं देता अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खिलाने के लिए। अब याद रखिए, मिस्कीन किसे कहते हैं? जिसकी आमदन उसकी जरूरियात को पूरा नहीं करती, जरूरियात जिंदगी को। कुरान में इसमें ताम मिस्कीन का तज़किरा है, खाना खिलाना, लेकिन इंसान समझ सकता है कि ये एक बड़ी जरूरत है कि जिसके बगैर यानी भूखा इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसका जिक्र किया जा रहा है। ओवरऑल जो तालीमात कुरान और तालीमात इस्लाम है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो मसाकीन का ख्याल रखना, उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करना, लिबास नहीं है लिबास पहनाना, तालीम नहीं है तालीम देना। अच्छी तरह तवज्जो फरमाइए, अच्छी तरह तवज्जो फरमाइए। एक दफा है कि एक शख्स के पास है माल और वो उस माल से मिस्कीन को, जरूरतमंद की मदद करता है। एक दफा है कि मैं कहूँ कि मसलन मेरे पास तो माल है ही नहीं, या अल्लाह मैं कैसे हेल्प करूँ, तो मुझे भी अल्लाह ताला बगैर जिम्मेदारी के नहीं छोड़ता मिस्कीन के मामले में, अगर मेरी हालत ऐसी हो कि मेरे पास कोई माल नहीं है, कोई भी हो, उसको भी खुदावंदे आलम आजाद नहीं छोड़ता। तेरे पास माल नहीं है लिहाजा तेरी मस्कीनों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तेरे पास माल नहीं है तो ये आयत क्या कह रही है, तेरे पास माल नहीं है लेकिन तेरे पास जुबान तो है, तेरे कुछ दोस्त तो हैं, तेरे कुछ जानने वाले तो हैं, उनको तरगीब दिला सकता है। तू नेकी के काम की तरफ दूसरों को खबर तो पहुंचा सकता है कि फलान मिस्कीन है, फलान यतीम है, फलान जगह पर ये मसलन इलाही काम है, इसके लिए तुम शामिल हो जाओ। बहुत सारे लोग कि जिनके पास दुनिया का माल नहीं था इसलिए बड़े बड़े अजर में शरीक हो जाएंगे, क्योंकि खुद तो नहीं था लेकिन दूसरों को बताया, मुतवज्जे किया करते थे, तरगीब दिया करते थे, अलबत्त अपनी इज्जत नफ्स को मलहूज रखते हुए। ऐसे अंदाज में नहीं कि इंसान की अपनी इज्जत नफ्स मजरू हो जाए और लोग बदगुमानी करें कि ये शायद खुद को जिसने खाना होता है इस तरह वक्त ये कहता रहता है। अच्छे अंदाज में, बाइज्जत अंदाज में, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। ये दो अलामतें, पस हम बात को मुख्तसर करें, ये दो अलामतें जिसमें पाई जाती हैं यतीम और मिस्कीन के बारे में गलत रवैया। कुरान कह रहा है, अल्लाह जो तबीब है इंसानों का सबसे बड़ा, बता रहा है कि तू बीमार है और बड़ी मोहलिक बीमारी में मुबतला है, तू क़यामत को नहीं मानता। अगर तुझे ये पता होता कि तूने अपने इन रवैयों का हिसाब देना है और जिसको हिसाब देना है उसको ये रवैये सख्त नापसंद हैं, तो तू बड़ा अलर्ट होता, तू बड़ा होशियार होता, इन कामों में तू बड़ा एक्टिव होता। अब ये आम दो सिफात बयान की और फिर इसी कयामत को झुटलाने से, अब ये बड़ा अजीब है मसला, मरबूत किया जा रहा है उन नमाजियों को जो नमाज के बारे में सुस्ती और गफलत का शिकार होते। बेनमाजियों की बात नहीं हो रही, बेनमाजियों की बात नहीं हो रही, तवज्जो फरमाए। आयत नंबर 4, फवैलुल लिल मुसल्लीन। वैल का माना हमने सूरह हुमज़ा में बयान किया था, एक तो इसमें यह माना होता है जिसको कहा जा रहा होता है वैल उन लका, तुझ पर वैल हो, उसे कहा जा रहा होता है कि जो तू काम कर रहा है इसमें बर्बादी है, और दूसरा उसे कहा जा रहा होता है कि बड़ी हसरत है, काश तू ये काम ना करता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो हलाकत है नमाजियों के लिए। यहाँ पे मैं इशारा कर दूँ, बाज लोग अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं। अब ये जो नमाजियों को हलाकत कहा जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कौन से नमाजी हैं जिनके लिए हलाकत है, लेकिन कुछ लोग अल्लाह की आयात को तोड़ फोड़ कर उनका मजाक उड़ाते हैं और मसलन कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ नमाजियों के लिए हलाकत है, और अल्लाह ने चर्सियों के लिए तो नहीं कहा हुआ हलाकत है। मसलन एक चर्स पीने वाला या एक भंग पीने वाला क्या कहता है, कुरान में आया ना फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है, कुरान में कहीं दिखा दो लिखा हो चर्सियों के लिए हलाकत है, भंगियों के लिए हलाकत है। इस किस्म के अल्लाह की आयात को तोड़ फोड़ कर मजाक उड़ाने वाले, बात को अपनी जगह से हटा कर किसी और जगह फिट करके और लज्जत लेने वाले और तंज करने वाले, ये कुरान ने इसकी इनकी सिफात बयान की हुई। फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन कहते हैं नमाजियों को, तो ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। आयत नंबर 5, कौन से, अल्लदीनहुम अन सलातिहिम साहून, वो के जो अपनी नमाज के बारे में गाफिल रहते हैं। नहीं फरमाया फी सलातिहिम साहून, अपनी नमाज में, एक नमाज में सहव होता है, जैसे किसी से मिसाल के तौर पे तशहुद रह गया या तशहुद के लिए बैठना था उठ के खड़ा हो गया, जिसको नमाज के अंदर सहव कहा जाता है। और यहाँ पे मैं एक बता दूँ, मैंने बहुत सारे बाज़ुकात पढ़े लिखे लोगों के मुँह से भी ये लफ्ज़ गलत सुना है, सीन हा और वाव, सीन हे और वाव, ये लफ्ज़ है सहव, साहव, ठीक है। बाज़ लोग इसे क्या बोलते हैं, सहू, मुझे नमाज में सहू हो जाता है, तो ये गलत है। इसी तरह बाज़ लोग लग़व को बोलते हैं लघू, लघू गुफ्तगू कर रहा था, वो लघू नहीं होता, लग़व होता है, और सहू नहीं होता, सहव होता है। तो बहुत सारे लोग बाज़ुकात अच्छे भले दुनियावी तौर पे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस मामले में यानी ये इस गलती का शिकार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह दुरुस्तगी फरमा लेंगे। फ़ी सलातिहिम, नमाज के अंदर सहव होना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उठ के खड़ा होना था, बैठ गया तशहुद के लिए, या बैठना था उससे सहव हो गया, ये नादानिस्ता होता है, अमदी और जानबूझकर नहीं होता। यह है अन सलातिहिम साहून, ये सहव का लफ्ज़ जब अन के साथ होता है तो ये माना देता है सुस्ती और गफलत का, यानी इंसान को पता है लेकिन सुस्ती कर रहा है, ढीलेपन का मुजाहरा कर रहा है, गफलत कर रहा है, देर से नमाज पढ़ रहा है, इतनी देर की मिसाल के तौर पे सुबह उठा जी, अलार्म बजा, उसने फिर चुप कराया, फिर थोड़ी देर में बजा, फिर चुप कराया, यहाँ तक कि नमाज ही कज़ा हो गई, मिसाल के तौर पर सुस्ती और गफलत की वजह से, वो इरादा नहीं था लेकिन गोया के इरादा था, सुस्ती की वजह से बार बार नमाजें रह जाती हैं, दूसरे कामों को अहम समझता है, नमाजों को पसे पुश्त डाली रखता है, लेट करता है, तो इससे भी जब सहव का लफ्ज़, ये साहून चूँकि सहव से बना है, साहून यानी सहव का शिकार लोग, सहव करने वाले, ये जब अन के साथ आता है तो गफलत और सुस्ती मुराद होती है। बस आप देखिए कि कुरान मजीद फरमा रहा है कि उनके लिए हलाकत है। अब इस हलाकत से क्या मुराद है? अगर और कुछ मुराद ना हो तो कम अज़ कम ये मुराद है कि वो देखेंगे, अगर ये नमाजें जो हमने ढीली ढाली पढ़ी थी, अगर हमने इन पर तवज्जो दी होती, इन नमाज़ों को सही थोड़ी मेहनत की होती, अहमियत दी होती, तो ये नमाज़ें कहाँ पहुँचा सकती थी। जैसे हमने सूरह क़ारिया में अर्ज़ किया कि नमाज एक अमल साले है, इसका वज़न हल्का भी हो सकता है, इसका वज़न भारा भी हो सकता है, शर्त यह है कि किस तरह नमाज पढ़ी है आपने, किस तवज्जो के साथ, सारे वक्त पढ़ी है या लेट पढ़ी है, मानी की तरफ तवज्जो रखी है या अल्लाह से क्या कह रहे हैं आप, पता आपने रखा है या पता नहीं रखा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हर तरह की गफलत को आप ले आए वो इस साहून में शामिल है। इंसान क़यामत के दिन पछताएगा कि काश मैंने ये टूटी फूटी नमाजें ना पढ़ी होती। इसीलिए उसूल काफ़ी के अंदर भी मौजूद है, दीगर कुतुब में भी, कुतुब रवायात में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, वक्त शहादत फरमाया, जो लोग मौजूद हैं जमा करो, जब जमा हो गए, तो मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद फरमाया कि हमारे शियों को ये पैगाम दे देना कि हमारी शफात नमाज को हल्का समझने वालों को नसीब नहीं होगी। ये भी तो बातें बतानी चाहिए, नारे लगवाने वालों को, मज़े मज़े की बातें करने वालों को ये भी बताना चाहिए, वरना खयानत है, वरना फ्रॉड है, और दुनिया के हर फ्रॉड से बड़ा फ्रॉड है ये। चूँकि हम अर्ज़ किया करते हैं कि दुनिया में अगर फ्रॉड हो गया, आपकी सारी जमा पूंजी लुट गई, कितना अरसा आपको दुनिया में रहना है, गुजर जाएगा, लेकिन जिसने आपकी आखिरत लूट ली गलत बात बता के, आधा सच बता कर, क़यामत के दिन आपको कितना गुस्सा आएगा उस पर। कोई आपके साथ चंद लाख रुपए का फ्रॉड कर ले, आपको दिल करता है कि इसको ऐसी जेल हो कि जेल से निकले ही कभी नहीं, आपका बस चले तो आप उसका मुंह नोच लें, ऐसा दिल करता है या नहीं करता। कुरान ने बताया वो क़यामत के दिन जो गलत दीन बताने वाले थे और रहनुमा बने हुए थे, वो अपने पैरोकारों से बेजारी करेंगे, और ये पैरोकार भी बेजारी करेंगे, और एक दूसरे पे लानतें करेंगे, एक दूसरे पे लानतें करेंगे, और पैरोकार कहेंगे या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन लाइनों की वजह से आज हम इस स्टेज पर पहुंचे, इस जहन्नम में पहुंचे। तो कुरान मजीद ने फ्यूचर की तस्वीर भी दिखा दी हुई। अल्लदीनहुम अन सलातिहिम साहून, जो वो नमाजी के जो अपनी नमाजों के बारे में गफलत का शिकार है, यानी ढीला, रूटीन में ढीला है, नमाज के बारे में गाफिल है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है, कब कर रहा है। छह, और एक और सिफत उन नमाजियों के लिए भी हलाकत है, क्या सिफत है जिनकी? अल्लदीनहुम युराउन, जो रियाकारी करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं दिखाने के लिए। और ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह हम सब अपनी इस्लाह की कोशिश करें कि मसलन फ़र्ज़ करें कि जब मैं अपने घर में तन्हाई में मसलन फजर की नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो कैसी नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं मस्जिद में या किसी और जगह पर जहाँ और लोग भी मुझे देख रहे हैं, वहाँ जब नमाज़ पढ़ता हूँ, तो आया मेरी घर की नमाज़ और मस्जिद की नमाज़ में फ़र्क होता है? ये फ़र्क क्यों है? इस फ़र्क की जड़ कहीं रियाकारी में तो नहीं है? यानी बंदे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अल्लाह की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के सामने जैसे भी खड़े हो जो मसला नहीं है, बंदों के आगे बेइज्जती ना हो, अल्लाह के आगे अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, ये रियाकारी के जरासीम है, रियाकारी के जरासीम। अल्लाह वाकियन गफूर रहीम है, इसका मतलब यह है कि बंदों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए अल्लाह के सामने, अल्लाह देख रहा है कुछ नहीं होता, बंदे देख रहे हैं अलर्ट हो जाओ। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो इंसान को फिर बड़े बड़े गुनाह भी करवा देती है। बंदों से छुपेगा अल्लाह से, तो उसको अल्लाह को इंपॉर्टेंस देने की इसको आदत नहीं है, इसके अंदर सिफत नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी खराबियां भी ये बीमारी इंसान से करवा देती है। कौन सी? रियाकारी वाली। और एक और तो बदतरीन नतीजा रियाकारी का वो क्या है कि अजर और सवाब कुछ भी नहीं मिलता। रोज़ क़यामत कहा जाए तो कोई बंदा कहे जी मैंने तो इतनी नमाजें पढ़ी थी, अल्लाह ताला कहे जिनके लिए पढ़ी थी उन चाहता था लोग तुझे कहें नमाजी है, लोग बड़ी तारीफ वाली नज़रों से तुझे देखें, तेरी तारीफ करें, बड़ा नमाजी है, तूने अजर ले लिया वहां पर, यहां पर कुछ भी नहीं तेरे लिए। انما يتقبل الله من المتقين, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। ये हर जगह को ये आयत अपने दायरे में लिए हुए, रियाकारी खिलाफ तकवा है, तकवा खुदा का खौफ, रियाकारी बंदों का खौफ, तकवा अल्लाह का लिहाज, रियाकारी बंदों का लिहाज, बंदे मुझे देखें, बंदे यूं ना कहें, बंदे वो ना कहें। الذين هم يراؤون, जो रियाकारी करते हैं, सातवीं और आखिरी आयत, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, और आम इस्तेमाल की मामूली चीज़ें भी नहीं देते लोगों को। यमनाउन माने मना कर देना, रोक देना। अलमाउन, याद रखिए मीम ऐन और नून, वो पानी जो जारी हो और सब के लिए खुला हो उसे माइन माइन कहते हैं, कुरान में भी ये लफ्ज़ आया है। इसी से माउन है, यानी वो चीज़ें कि जो किसी को मना नहीं करना चाहिए उनके इस्तेमाल से, मामूली होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे बाज लोग खसीस बन जाते हैं, ऐसे माल के आशिक बन जाते हैं कि मामूली तरीन चीज़ भी किसी को देते हुए जान निकलती होगी। मिसाल के तौर पे जेब में पेन है तो किसी ने कहा ये आप पेन देंगे मुझे थोड़ा सा लिखना है, इसकी जान निकलती, मैं क्यों दूँ पेन इसको। मामूली सी चीज़ भी देने से, ये आम इस्तेमाल की रूटीन की चीज़ें, आपका दिल नहीं भी कर रहा, ये रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ है, लोगों की रूटीन की ज़रूरियात में है, अगर आपके पास है, कुरान आपसे कहता है कि आप लोगों की हेल्प करें इस, वरना इसका एक लिंक है कि आप क़यामत पर सही यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। क्यों? अगर क़यामत पर ईमान होता तो फिर तो आप अल्लाह से गाइडेंस लेते, अल्लाह कह रहा है दो लोगों की हेल्प करो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजर दूंगा, तो तुम क्यों रोक के बैठे? तवज्जो फरमाए, इससे मुराद वो चीजें हैं कि जो आम इंसानी जिंदगी की जरूरियात होती है, ऐसी चीजों को लोगों से रुकावट का बायस बन जाना, या ऐसी चीजों को कि जो मिसाल के तौर पे अर्ज करूं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, तफसीलात हैं जो हम सारी अर्ज नहीं कर सकते। एक चीज है कि जो इंसान की जरूरत की है और उसकी मामूली कीमत है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, मसलन मास्क जरूरत है इंसानियत की, मास्क जरूरत है लोगों की, मास्क पहनना है, कुछ दवाइयां जरूरत हैं लोगों की। अब कुछ बेईमान, और आप इस आयत को आप देखें कि क्या तूने उसको देखा जो क़यामत को नहीं मानता, ये यमनाउन अल माउन वाला ये तबका भी है। काश के कुरानी दीन मुआशरे में उतर आए बजाय ढकोसलों के और आरजुओं में जन्नत में पहुंचने के, बगैर अल्लाह के आइन पर चले हुए। आज मुसलमान उम्मत के बहुत सारे लोगों की वो हालत है जो, यानी माल के मामले में जो यहूदियों की हालत थी, माल की हिर्स और हराम तरीके से माल खाना। अब यहाँ पे आज मसलन मिसाल के तौर पे मास्क जरूरत है आम इस बीमारी में के लोगों को इस्तेमाल करना है, ये बेईमान क्या कर रहा है? ये मास्क को शॉर्ट करता है ताकि महंगा करके बेचे। मास्क की मिसाल दे रहा हूं, कोई भी चीज, वो तमाम चीजें जो इंसानों की जिंदगी की रूटीन में जरूरत है उनको बाजार में शॉर्ट कर देना और उसके बाद कीमत बढ़ा के बेचना, ये वही है जो क़यामत को नहीं मानते। ये वही है जो यमनाउन अल माउन है, ये वही है जिनके लिए वैल है अल्लाह की तरफ से। चाहे जितने मर्जी इस हराम के मास्क बेचकर और हराम से महंगी दवाइयां बेचकर और अस्पतालों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल लेकर डिकार मार के उसके बाद हज करके आ जाओ, अल्लाह ताला ये हज तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तुम्हारे अंदर इस्लाम का होना ही मशकूक है। अगर कुरान मजीद के जो अंदर से डील करता है इंसान के, जाहिर में कोई कुफर का फतवा नहीं लगेगा क्योंकि तुम कलमा पढ़ते हो, लेकिन क्यामत के दिन तुमने किस सफ में खड़े होना है वो तुम्हें कुरान बताएगा, वो तुम्हें खुदा बताएगा। कुरान बताएगा यानी खुदा बताएगा, वो बताएगा तुम अंदर से क्या हो। चाहे तुमने रिश्वत का माल खा के महल तामीर करके ऊपर हादा मिन फजल रब्बी लिख लिया हो और ऊपर पाक पाक नाम भी लिख लिए हो और ऊपर पता नहीं तुमने कुरान की चंद आयतें भी लिख रही हूं, अल्लाह तुम्हें बताएगा तुम बेईमान हो, काफिर हो या तुम मुसलमान। अल्लाह जाहिर के मुताबिक फतवा नहीं देता, अल्लाह अंदर के मुताबिक फतवा देता है। अलीमुन बिदातिस सुदूर यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, आंखों की खयानत का उसे इल्म है और जो सीनों के अंदर चीजें छुपाई जाती हैं, दिलों के अंदर मख्फी बातों का भी उसको इल्म है। ये यमनाउन अल माउन, वो बेईमान के जो लोगों की जरूरत की चीजों को शॉर्ट कर दे, एक दफा देना ही ना, लेकिन एक उसकी शक्ल जो आजकल बड़ी राइज है वो ये कि उसकी कीमत कुछ है, उसको बढ़ाकर लोगों को जरूरत महसूस हुई, उसको बाजार से शॉर्ट किया, जखीराअंदोजी की, उसके बाद ये बेईमान बेच रहा है। चाहे तेरे मुंह पे दाढ़ी है, चाहे तेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, चाहे तेरे हाथ में तस्बी है, चाहे तेरे हाथ में तस्बी नहीं है, चाहे तू शिया है, चाहे तू बरेलवी है, चाहे तू देवबंदी है, चाहे सलफी है, अहले हदीस है, तू जो कुछ भी है तू मोमिन नहीं है, कुरान मजीद की नजरों में तू बेईमान है, तू क़यामत को नहीं मानता और अल्लाह तुझे पकड़ेगा। वयमनाउनल माउन, और इस किस्म की बेईमानियों से कमाए हुए माल से तूने अगर उमरा किया और तूने हज की समझा, अल्लाह ने सब बख्श दिए, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। हराम के माल से किया हुआ हज और उमरा, लोगों को लोग मर रहे थे, तूने महंगी करके चीज बेची, अब तू कह रहा उमरा करके बैलेंस हो जाएगा, बेईमानों से अल्लाह कबूल नहीं करता। तू दुनिया में भी लोगों को भी बेईमानी करता है, अल्लाह को भी तू बेईमानी लगाना चाहता है। يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, लेकिन सिवाय अपने आप के किसी को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन बेशऊर हैं। बेशऊर होता है दुनिया परस्त, बेशऊर होता है खुदा की बात ना मानने वाला चीटर, बेशऊर होता है। वमा यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है कि ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने लिए जहन्नम को तैयार कर रहे हैं। सूरतुल माउन यहाँ पर तमाम होती है। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में अगली सूरा को हम बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।